اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الصالحین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر سبق اللہ تعالیٰ نے امام صافی مجلس ریکسل ہاؤس کی جو بائیوگرافی آف معصومین پہ ہو رہی تھی اور کل ساتویں امام کا ذکر ہوا آج بھی تھوڑا ساتویں امام کا ذکر اور آٹھویں امام کا ذکر پہ آج میں کمپلیٹ کر دوں گا پورے آٹھویں امام کے حالات یا ساتویں امام کے پورے حالات نہیں آئے بالکل جیسا میں چاہتا تھا ویسے کچھ نہیں ہوا اس لیے کہ وقت کی کمی ہے اور کل اور پرسوں صرف دو تقریریں اور ہیں جس میں تین امام کا ذکر ہونا ہے نویں دسویں اور گیارہویں امام کا تو آج آٹھویں امام پہ میں ختم کر دوں گا ساتویں امام سے سٹارٹ کر کے پھر کل پرسوں دو دن میں تین اماموں کو رہ کے حالات کو بیان کرنا ہے نائن ٹینتھ اینڈ الیونتھ پھر میں آپ سے کہہ رہا کہ خالی ایک سکیچ آ رہا حالات پورے نہیں آ رہے انکمپلیٹ مجلسیں ہو رہے پورے حالات جب تک ہمارے سامنے نہیں آئیں گے نا اندازہ نہیں ہوگا کہ امپورٹنس آف امام اور امام کس دور سے وقت گزارنا تھے اور ان لوگوں کا کنٹریبیوشن کیسا تھا اس لیے کہ وہ اس دور کے جو حالات تھے جو حکومتیں تھیں اور جو حکومت ٹرائی کر رہی تھی اور وہ لوگ اپنے مقصد میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہے تھے لیکن اس مقصد کو معصومین نے اپنے کردار سے اپنے علم سے اپنے تخوے سے اس مقصد کو حکومت کے مقصد کو ختم کیا اور شیعہ کو لا کے ایک جگہ کھڑا کیا ورنہ اگر یہ معصومین اس وقت نہیں ہوتے تو شیعہ کبھی ہی ختم ہو جاتی جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا جیسا میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہونے کی وجہ سے حالات ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے تھے اور وہی پہنچ رہے تھے جو حکومت چاہ رہی تھی حکومت لوگوں کو خریدی بھی تھی بنی امیہ بنی عباس کا ایک ہی مشن تھا کہ اہل بیت کا نام مٹ جائے یہ خالی ان کا مشن نہیں تھا سٹارٹنگ سے بیت یہی انداز تھا کہ اہل بیت کے نام کو ختم کرنا ان کے امیج کو ختم کرنا لیکن وہی بات کہ دنیا کتنا بھی کچھ کر لے جب تک اللہ نہیں چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اور اس اسلام کو باقی رہنا تھا ورنہ اگر یہ اہل بیت نہیں ہوتے تو پورے نبیوں کی محنت ختم ہو جاتی کم اس لیے کہ بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں تھا لیکن یہی وہ اہل بیت تھے کہ جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے علم سے تقوی سے لوگوں کو اپنے اخلاق سے ایسے مضبوط کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے آ گئے ان کے دروازوں میں اور آ کر علم کو حاصل کرنے لگے یہ امام کا ویژن تھا امام کا ویژن تو ہوتا ہی تو ساتویں امام کا زمانے کے جو حالات کل آپ نے سنے کل میں نے ایک چیز بتائی تھی خالی کہ کیسا کردار کیسا اپنے شیعوں کا خیال رکھنا وہ بڑی بات ہے لیکن علی ابن یقین کا واقعہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا لیکن کل جو میسیجز تھے اس میں اس پہ ہم اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرنا کہ امام آپ نے بچپنے سے سنا یہ واقعہ مشہور ترین واقعہ لیکن جس انداز سے کل پیش کیا گیا اس میں جو پیغامات تھے کہ کس طرح سے مولا کے پاس جانا اور کس طرح آج کے دور میں آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے زمانے کے امام کے پاس یا کسی امام کے پاس جانے کے لیے وہ اتنے بڑے پوزیشن کے بعد بھی ایک لمحہ اس کو فکر کیا تھی آج اگر اتنی ہمارے پاس فکر آ جائے نا سب کو بول رہا عورت مرے لڑکی لڑکا سب کو کیا فکر کہ امام راضی ہے یا نہیں ہم کبھی سوچتے یہ بات ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے یہ سب سے بڑی میسیج تھا اس کا اگر آپ سمجھ رہے تھے تو میسج سب کے لیے تھا کہ یہ فکر یہ سوچ آج کتنے شیعوں کے پاس ہے دنیا میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں دوسروں کو ہم دیکھیں نہیں میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ کیا میں کبھی یہ سوچتا کہ ارے میرا مولا مجھ سے راضی ہے کبھی نہیں سوچتا یہ فکر ہی نہیں آتی واقعات تو ہزار پورے واقعات ایک ہی ہے جتنے واقعات ہیں سب پڑھے ہوئے سب سنے ہوئے لیکن پیغام کیا لے رہے یہ فکر اگر آج ایک کو بھی آ جائے نا ہمارے پاس آ جائے نا تو ہم کامیاب ہو جائیں ورنہ آپ ڈیزاسٹر ہے لائف میں کوئی چیز قبول نہیں ہوگی مجھے احساس ہی نہیں ہے مجھے کبھی درد ہی نہیں ہوتا تکلیف ہی نہیں ہوتی कभी आप अकेले बैठते, अकेले बैठ के सोचते यार पता नहीं मेरा मौला मुझसे राजी है या नहीं। कभी मेरे जहन में ये बात ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए हमने ग्रांटेड लिया। मैं ये बोल रहा कि मुझसे तो राजी है अली इब्ने यतीम का इतने बड़े स्टेटस के बाद खाली इमाम ने मिलने से इनकार किया तो ठीक है, वो ठहर गया। उसने सारे स्टेटस को नीचे कर दिया, अपने सारे मकाम को नीचे कर दिया। बोला नहीं, जब तक मौला राजी नहीं होंगे। अच्छा, वहां जाके आर्गूमेंट कर सकता था, मौला सातवें इमाम से आर्गूमेंट कर सकता, जैसे आज हम आर्गूमेंट कर, क्या आर्गूमेंट कर सकता था? मौला मुझे मालूम ही नहीं था, मैं तो बिजी था, और लिटरली वो बिजी था, वो आया मुझे क्या मालूम। लेकिन क्या आर्गूमेंट नहीं किया वहां? उसने क्या किया? उसने कहा मौला बाप मैं राजी, आप कैसे राजी हो? कहा उससे माफी। तो उसने ये नहीं कहा मौला मैं चाहूंगा ना, ओके आई गो टू बगदाद, मैं तो बगदाद में रहता हूं, मैं जाऊंगा उससे माफी मांगू, ये भी नहीं बोला। इसे उसको मालूम है जब तक वो राजी ना, मैं इमाम राजी। कितने आज हमारे ऐसे वाकयात हैं, कितने लोगों को हम हट करके बैठे हुए, और उसके बाद हम, मैंने कभी ये सोचा यार पता नहीं आज मेरा मौला मुझसे राजी? एक दफा सोचो यार, एक दफा दिन भर में 24 घंटे में हमारे जहन में एक सेकंड का, एक मिनट का ख्याल आना, जस्ट वन मिनट, कि आज का दिन मेरा मौला मुझसे राजी। हर दिन अगर तुमको ख्याल आता रहा ना, हर दिन, तो हर दिन तुम्हारे लिए एक नया दिन, हर दिन तुम्हारे लिए एक रहमत का दिन हो जाएगा। हर दिन अगर मैं ये सोचे कि आज पता नहीं राजी हुए, नहीं मानो राजी हुए या नहीं, माफी मांगना बेहतरीन। इस काम में क्या है? माफी मांग कि मौला अगर आज, जैसे आज व्हाट्सएप पे चलता नहीं है, उम्रे पे जाने से पहले 15 शाबान को शबे कदर में एक बिल्कुल मैसेज आता, प्रीपेड मैसेज जिसको, इफ आई हर्ट यू आई एम सॉरी। आप समझ रहे मेरी बात? ये व्हाट्सएप के मैसेज से सॉरी नहीं होती। मैं लेट मी क्लियर, अगर मैं हज पे जा रहा, 15 शाबान आ रही, बिग नाइट है, एक बड़ा सेलेक्टेड मैसेज है कि इफ आई हर्ट यू आई एम सॉरी, व्हाट डू यू मीन आई एम सॉरी? सॉरी इसको थोड़ी बोलते कि एक मैसेज, जनरल मैसेज तुम रिलीज कर दो कि पूरा माशा पूरा बॉम्बे सुन ले कि भाई अभी आपके दिल को एक सेटिस्फैक्शन, ये शैतानियत है, एक सेटिस्फैक्शन हो गया कि मैंने तो आज की रात माफी मांगी, मेरे तो गुनाह माफ हो। कहां से माफ होंगे? माफी इसको थोड़ी बोलते कि आप जनरल मैसेज भेज दो, आपको पर्सनली कॉल करो भाई, कॉल करके उसको बोलो कि भाई आई एम सॉरी। इसलिए कि मैं कॉल क्यों नहीं कर रहा, इसीलिए कॉल नहीं करा कि मेरी इज्जत जाएगी। क्या बोल रहे मैं कॉल क्यों करूंगा? मैं बड़ा आदमी हूं बॉम्बे का, मैं बॉम्बे बॉम्बे बड़ा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आपको पता है इतने दिन से सुन रहे हैं मुझे कि मैं बोलता हूं जिस शहर में पढ़ता हूं। तो अगर मैं कॉल करूंगा बॉम्बे में किसी को तो मेरी तो इज्जत जाएगी, मैं कैसे कॉल करूंगा? जनरल मैसेज छोड़ दो। अली इब्ने यतीम से बड़ी इज्जत किसी की थी? उससे बड़ा स्टेटस आज किसी का है? उसने कैसे किया? ये चीज सीखो साफीमान की बायोग्राफी से। ये सब एक चीज अगर आज मेरी मदिस में कामयाब हो गया मैं, तो मैं कामयाब हुआ। ये चीज हमारे पास आ, जनरल मैसेज से नहीं होता। कोई भी बकरीद में और अरफे में या शबे खदर में या रमजान में या हज पे जाते हुए, उम्रे पे जाते हुए, ज्यारत पे जाते हुए, एक से पूरा जनरल मैसेज है पूरे 500 आदमी को जा रहा कि भाई उसने तो माफी मांगी। हाँ, शैतान भी तुम्हारे दिल में ये डाल देता, तूने तो माफी मांगी, आज की रात माफी मांगने के लिए इमाम बोले और हमने माफी मांगी। ये इमाम बोले ना, हमको ये करना है। इस तरह इबादत नहीं होती, इस तरह माफी नहीं होती। इमाम की जिंदगियों के हालात को देखो कि मौला कितना टेक केयर कर रहे अपने गरीब शिया का। इस वाक्य से यही पता चला कि एक को हर्ट करे तो इमाम कभी राजी नहीं होता। 100 आदमी को हर्ट करे हुए, साथ में इमाम हमसे आज के जमाने का इमाम हमसे राजी होगा? हम ये चीजों को सीखना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इंतहाई सख्त जमाना है, इसलिए कि ये एक इमाम ऐसा। अच्छा, अजीब बात ये कि इमाम जिंदान में इतना साल रहा जेल में, लेकिन जाने के बाद इतना मजबूत कर दिया हुकूमत को, इतना डाउन कर दिया कि इमाम की शहादत के बाद हुकूमत मजबूर हो गई बेटे को वलियत बनाने के लिए, क्राउन प्रिंस बनाया माला को, मजबूर हो गई। तो आप सोचे इतना कैद में रहे, जेल में रहे, उसके बाद हुकूमत को ऐसा झुकना पड़ा। ये इमाम का किरदार है, मुसअब का किरदार है। इनके जमाने में मैंने एक बात बोली थी शायद कल की मजलिस में, कि म्यूजिक को सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला हारून रशीद था, इस्लाम आने के बाद की बात, सबसे ज्यादा प्रमोट किया, अरे लीगल कर दिया था, लीगल कर दिया, हर तरफ म्यूजिक होती थी हर तरफ। तो ये भी हमको देखना है कि म्यूजिक को हम कितना पसंद करते और मुसलमान जाफर ने कितना इसको कंडम किया। दोस्तों आज हमारी पार्टीज या हमारी शादियों में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलती, नहीं चलती होगी, यहां पे नहीं चलती, मैं बात बोल रहा हूं, चलती है। या घर में कभी कोई पार्टी हुई तो हम नहीं चलाते, या कोई शादी हो रही चलो फैमिली मेंबर्स है डांस करेंगे, फैमिली मेंबर्स कैसे डांस कर सकते यार, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, नामहरम नहीं है कोई, कजन्स नामहरम नहीं है, और हम बड़े आराम के साथ हम डांस करते हैं, बोलते कि नहीं यार चलता है, इतना तो चलता है। फिर हम मोमिन, इमाम हुसैन अलैहि सलाम यही बता रहे कि तुम कितने भी जमाना कितना भी गंदा हो जाए, शिया हमेशा उभर के आना शिया, तुमको देख के बोलना है शिया ऐसी है। इमाम ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा, इमाम ने एक लम्हे के लिए भी कभी भी कोई इजाजत नहीं दी तुम ये कर सकते, इसलिए जमाना खराब है। मुझे बताओ आप, एक एक सेकंड के लिए भी मौला ने इजाजत नहीं दी, ओके जमाना बहुत खराब है, तुम्हारी जान चल, कहा मजहब को छुपा लो, तकिए में चले, ये नहीं बोला कि ये काम करो। ये मदीसा में कोई स्टोरीज नहीं सुना रहा, ये मदीसा में मुझे एक इनकलाब चाहिए, एक फिगर चाहिए कि इमाम की जिंदगी देखो हमारी जिंदगी देखो, मासूमीन की जिंदगी का हम देख रहे, आप देखो इतनी म्यूजिक का उसने प्रमोट जालिम ने किया था, इतना जुल्म हो रहा था कि लैला और मजनू की वो बताते हैं कि वो जमाने का हालात थे, हर तरफ यही चल रहा। उसके बाद इमाम को तारीख का मशहूर वाक्य, इमाम को जिस प्रिजन में जिस जेल में रखा था उस जालिम ने, एक सलवात पढ़े प्लीज आगे आ जाए, प्लीज आगे प्लीज आगे आ जाए, तो एक ऐसी जेल में रखा था, ऐसी जेल में कि अगर मैं आज बोलू आपको तो आपको यकीन ना है कि किस जेल में मेरा मौला रहा, कैसा रहा। दोस्तों एक दिन प्लीज यार मेरी तरफ देखो और मुतवज्जो रहो, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन नहीं था, यह 14 साल 14 years उस जेल के अंदर इमाम है, और इतनी छोटी कि रिवायतों में है कि अगर बैठते तो खड़े नहीं हो सकते थे, खड़े हुए तो बैठ नहीं सकते। इमाम इमाम वक्त जमाने का इमाम वो ऐसी जेल में 14 साल उस जेल में रहे। जब जिंदा मान आया हर वक्त हारून रशीद क्या करता था, 6 महीने 1 साल एक केयर टेकर को रहता था, उसके बाद हर केयर टेकर जब आता था और इमाम के तखवे को इमाम की इबादत को देखता था, जालिम आता था लेकिन इमाम का चाहने वाला बन जाता था, तो ये क्या करता था हारून चेंज करने लगता था। एक दफा जब इमाम का सही चाहने वाला आया, उसने फर्स्ट डे इमाम से कहा, वो इंचार्ज था पूरे जेलर जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, पूरे उस प्रिजन का इंचार्ज था, उसने इमाम को देखा और आके कहा मौला मैं मेरे इख्तियार में एक ही चीज है कि मैं ये जेल से आपको कोई दूसरी जेल में भेजूं, मेरे इख्तियार में और भी कई है सेल जिसको आप बोलेंगे, उस सेल में आपको भेज दो, वो थोड़ी सी बड़ी है ये बहुत छोटी है, मैं ये कर सकता हूँ। उस अच्छा एक और बात, उसने कहा ये मेरे इख्तियार में है तो इमाम गया। अरे सुन रहे आप क्या बोल रहा यार, ये नहीं कि यार प्लीज मुझे भेज दे, नो यही चीज आगा खुमैनी का थी, जब आगा खुमैनी साहब पैरिस में थे तो उनको गोश्त पेश किया गया, चिकन या मटन, उन्होंने कहा यहाँ रूल ऑफ लैंड क्या है, यहाँ पे तो जिबा नहीं होता हलाल, और रूल ऑफ लैंड की रेस्पेक्ट करना लाजिम है। क्या बोल रहे हम, बोलते यार थैंक यू जो है आ जाओ हमारे पास। इमाम देखो आला खुमैनी का भी कहता, ये भी मुस्लिम सही है साफ इमाम के औलाद, कितना बोले तो उनसे कहा कि नहीं यहां पे इजाजत है आप हलाल कर सकते, तो जब खाया हो तो उसके बाद आला का जुमला है कि रूल ऑफ लैंड की हमेशा रेस्पेक्ट करना। मैं यहां पे यही बोलते मुझसे बात होती, मैं तो बॉम्बे में तो नहीं, मिसाल के तौर पर ये काऊ के बारे में बताते, अरे इंडिया में तो काऊ खा नहीं सकते,
मैंने कहा ठीक है नहीं खा सकते, अगर गाय नहीं खाएंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? नहीं खा, रूल ऑफ लैंड की रेस्पेक्ट कर, हुकूमत बोलती है नहीं खाना तो नहीं खा, इसे आप दुख सब्जी खाओ, क्यों खा रहे भाई गाय? तुम्हारी एक के काटने से 10 मुसलमान मार रहा, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल। इस्लाम इसको इजाजत ही नहीं देता, जो रूल ऑफ लैंड है उसकी रेस्पेक्ट करना लाजमी। तो यहां पर इमाम ने यह नहीं कहा कि मुझे दूसरे दो सेल में भेज दे, उसने कहा मौला मेरे इख्तियार में है, मेरे पास 4-5 सेल है, मैं किसी को भी इधर से उधर से इधर कर सकता, मैं चाहता आपको मैं उधर लेके। इमाम ने कहा ठीक है चले गए साथ में, वहां रहे एक रात, बड़ा मशहूर बात है लेकिन इसमें पैगाम, एक रात रहे बस। दूसरे दिन बुलाया, बुला के इस जेलर से कहा कि भाई तू ऐसा कर मुझे उसी में भेज दे। उसने कहा मौला वो इतना छोटा, इतनी आपको तकलीफ है, या तो कम से कम आप ले सकते हैं। इमाम ने कहा बेशक मेरी इबादत में खलल हो रहा। उसने कहा आपकी इबादत में क्या खलल हो रहा? कहीं इसके पीछे जो लोग रहते हैं वो सब गाने गाते हैं रात भर, इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी जगह रहूं कि मेरे कानों में। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता, क्या मौला के कंसंट्रेशन जिसको उर्दू में इस्तेखराह बोलते, क्या मौला की खुजू और खुशू में कोई कमी थी? अरे ये उस अली का बेटा है कि जिसके पैर से तीर खींच लिया गया तो जबान पे उफ तो क्या, खत्म में थरथराहट भी पैदा नहीं हुई, बल्कि नमाज के बाद जानिमाज के मुतालिक सवाल किया कि रंगीन क्यों है? ये उस अली का बेटा कि सादे वक्त में निकाल ही नहीं सक रहे थे मौला के पैर से तीर, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जब अली सजदे में जाए उस वक्त निकालना, इसलिए जब सजदे में जाते थे तो सिर्फ अल्लाह ही होता, कोई फिक्र कोई जहन में नहीं होता। यही चीज चौथे इमाम के लिए एक रिवायत है, चौथे इमाम की, चौथे इमाम के बारे में एक रिवायत है कि चौथे इमाम जो है सजदे में थे और शैतान अजदेहे की शक्ल में, रिवायत है मैं रिवायत पढ़ रहा जनरल रिवायत, अजदेहे की शक्ल में आके मौला का जो अंगोटा थम जिसको बोलेंगे उसको उसने चबाना शुरू किया, काटना शुरू किया और मौला सजदे में था, इतना काटा, इतना काटा कि खून निकल गया। फिर उसने पुकारा के हाजर से ला दे दी, एक रिवायत ये, लेकिन एक रिवायत हमारी ये है कि अल्लाह बोलेगा इमाम को सजदे ला दे। मैं शैतान की बात नहीं मांग रहा, लेकिन मैं बता रहा आपको हर वजह से ट्राई किया गया मौला के खुजू को खत्म करने के लिए, मौला का वो खुलूस खत्म कर, क्या सातवें इमाम का वो खुलूस खत्म हो गया था? क्या उनके कानों में आवाज आ रही थी? नहीं, इमाम ने बताया कि म्यूजिक हमारे लिए कितनी बदतरीन चीज है और आज हमारी रूह की गिला म्यूजिक है, आप इसको एक्सेप्ट करो इसको एक्सेप्ट नहीं करो। तो इमाम ने कहा मुझे उसी जेल में भेज दे, उसी सेल में भेज दे, उसी प्रिजन में भेज, मैं नहीं रहना चाहते। तो इमाम ने एक मैसेज दूसरा मैसेज ये दिया, अगर हमने सातवें इमाम की मस्जिद से उनका पैगाम सुने तो कम से कम ये साल मुहर्रम 1441 में ये डिसाइड तो कर लो, ये इरादा तो कर लो, ये नियत तो कर लो कि मैं आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी या घर में रखूंगी नहीं म्यूजिक। देखिए एक बात मैं और बोलता, हमारे साथ मसला क्या है कि आपको तो यार साल भर तो हम तो नहीं सुनते, किसी से पूछो, अब इतनी जरूरत नहीं है लोगों के घरों में जो है ना म्यूजिक चले, अब इतनी अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन चलता ओकेजनली पार्टी में चले, वो चीजों को भी खत्म कर, वो चीजें आपकी तरफ से खत्म, ये नहीं कि चलता यार साल में एक दफा दो दफा चलता, नहीं फिर कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप हिजाब कर रहे ज्यारत पे जा रहे हैं, अब वापस आने के बाद मैं तो जानता ऐसे लोगों को कि एयरक्राफ्ट से उतर जाता होता भाई, क्यों बोलते ठीक है यार अब तो आगे जैसा देश वैसा भेज, नो इस्लाम जैसा देश वैसा भेज की बात नहीं कर रहा। अगर जैसे तुम इमाम के पास हो, देखिए सातवें इमाम ने अली इब्ने यकीन के वाकये में कितने पैगाम आ गए कि इमाम कितना मॉनिटर कर रहा आपको, एक गरीब को भी कर रहा है, एक अमीर को भी कर रहा है, यही चीज आज जमाने का इमाम हमको देख रहा, यही चीज जमाने के इमाम की, कि ये गफलत में मत रहो कि जो चाहे मैं कर लूं मामले में मुझे क्या है, नहीं आपको लाजिम है, आपको थोड़ा सा फिक्र करना लाजिम है, इसलिए तुम फिक्र करोगे तो ये सब चीजें क्या है, इससे आपका इमाम से एक रिलेशनशिप बिल्ट होगी। दोस्तों आज मैं बार बार जो जुमला बोलता ना कि आज हमको पता नहीं चलता, आज हम रियलाइज नहीं कर रहे, इसलिए कि मेरे सामने पढ़ते कभी तो मरोगे, उस वक्त जाके रोने से बेहतर यह है, रिग्रेट करने से बेहतर यह है कि आज ही थोड़ा सा चेक करो, एक 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 चीज बेहतर का जुमला है कि एक एक चीज अगर तुम रोज छोड़ो, हफ्ते में एक दिन छोड़ो, महीने में एक दिन छोड़ो, यार तो साल में 12 चीजें छोड़ दिया आपने, साल में एक साल में 12 चीजों को छोड़ा, चलो एक दिन में नहीं छोड़ महीने में एक दफा कोई भी चीज छोड़ दो, क्या मैं आज से नहीं करूं। उसके बाद अब इंसान मिसाल के तौर पर जब उसका वेट बढ़ता है वो सारी चीजों को छोड़ता, जिम जाने लगता, क्यों जाता जिम, अपने आप को मेंटेन करने, बोलता यार पेट बढ़ गया, और यहां पे तो इतने बीमारी नहीं है, बाहर के मुल्कों में तो ऐसी बीमारी है, हर घर में एक वेइंग मशीन रहती है, क्यों वो उसमें रेस्टरूम में वेइंग मशीन रहती, रोज जाके चेक कर देखो कहीं बढ़ा तो नहीं। इमाम का जुमला है कि आपने ये जिस्म की इतनी फिक्र, जो आरजी जिस्म है तुम्हारा उस रूह की फिक्र क्यों नहीं करते जो हमेशा रहने वाली है, अल्लाह से मिलने वाली है। आप सोच रहे मैं फिक्र किसकी कर रहा, अपनी बॉडी की, ये बॉडी कितने दिन है, चंद साल, उसके बाद आपको मालूम है बाद में बात निकल रही, मरने के बाद 3 दिन के अंदर अल्लाह रूह को अपनी हमारी खबर के अंदर लहर में ग्रेव में भेजता, 3 दिन के अंदर गुजरे अभी यहां से, 3 दिन के अंदर भेजता कि जाके जस्ट गो एंड सी योर ओन बॉडी, अपने आंखों से रूह को बोलता जाके अपने जिस्म को देख, सड़ा हुआ जिस्म, बाल खत्म हो गए जिस बाल को इतना सजाया था, मैं सिर्फ जेल की बात करता औरतों की बात नहीं करता, मैं क्यों बात करूं किसी और की ही, मैं अपने आप लोगों की बात कर रहा, हमने इस बारे में कितना पार्टी में जाना है तो ये कलर का जेल लगाओ, ये करो वो करो, हराम नहीं है, जरूर लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं टेलिंग यू कि 3 दिन के अंदर जब आके देखती ना रू अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, चीखे मार के रो, चीखे मार के रो, यही बॉडी बोलते कि तुम हर दिन तुम सुपर लो अपने आप, हफ्ते में एक महीने में चेंज करो, लेकिन हम कर रहे हम सोचते नहीं ये बात को कि हमको भी चेंज करना, मुझे अफसोस इसी बात का किसी से, मैं पूरी दुनिया में बोलो एक आदमी नहीं मिला मुझे, होंगे मैं नहीं बोलता ऐसा, आई एम सॉरी, होंगे हजारों होंगे लेकिन मुझे नहीं मिले, क्यों कोई सीन आगे ये नहीं कहा मौलाना पता नहीं यार क्या होने वाला है, ये जुमला तो बोलते ही क्या होने वाला है, मेरा क्या होगा, क्या मेरा मौला मुझसे राजी, ये फिक्र अगर आज आ जाए ना, आज ये सीख लो बस कि ये चेक करते रहो 24 घंटे, जैसा आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते ना वैसे ये चेक करो, ये चेक करो कि क्या हमारा मौला मुझसे राजी है, क्या मौला मुझसे राजी है, ये फिक्र आ जाएगी ना तो तुम्हारी ये फिक्र को देख के ईमान तुमसे राजी हो जाएगा। जब इंसान डरता है ना, एक बात में बात में बात निकल रही, एक शख्स का कफन चोर, यही साथ इमाम के जमाने का, उस जमाने में तो लोग कफन चुराते थे, आज तो कोई नहीं चुराता, और चुराता है कोई, उस जमाने में बोला के जमाने एक शख्स था मशहूर हो गया था महल में, पूरे हदीसे में साफ इमाम के बता के कफन चोर, जब किसी को दफन करते रात में आता कफन उसके बॉडी से गौर से चोरी कर लेता मार्केट में, मशहूर हो गया था। इसका जो पड़ोसी था उसका आखिरी वक्त था, उसने क्या किया इस कफन चोर को बोला और से बुला के 2 कीमती कफन रखे सर, लेकिन भाई जो लेना अभी ले, जो लेना है तो अभी ले ले, लेकिन मेरी अब हम हंस रहे लेकिन मेरी बॉडी को निकट मत कर, बरहना मत कर, मुझे जलील मत कर, मेरे मैंने तेरे सामने 2 कफन रख दिए, तू कोई एक ले ले, लेकिन मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा मेरा आखिरी वक्त, महीना दो मेरा पता नहीं क्या खत्म हो जाओ ऐसे का, नहीं 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 आपको तो मालूम है कोई भी आप चीज को ऑफर करो पहले तो नहीं नहीं बोलेंगे लेकिन लेंगे जरूर वही, तो उसने क्या किया नहीं 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 बारह इसने कहा नहीं मुझे मालूम है आप शर्मिंदा मत रहिए आप ले लीजिए, इसने जो कीमती का बताओ चला महीना दो महीने 3 महीने बाद पड़ोसी का इंतकाल होगा, जब इंतकाल हुआ उसको दफन किया, ये तो कफन ले चुका था लेकिन वो जो आदत है वो आदत से पास नहीं आया, रात जैसी मगर اس کے ہونے لگا کہ مجھے کفن لینا ہے, لیکن پھر وہ بیک آف دا مائنڈ چل رہا کہ نہیں یار میں نے اس نے تو کفن دیا نا میرے سوال ہے. لیکن شیطان اتنا پیارے انداز سے آتا ہے, کیا خوبصورت طریقے سے اس کو گمراہ کرتا, ہم سمجھ ہی نہیں پائے اس کا شیطان کا. نہیں, جسے شیطان سمجھ میں آ جائے گا خود سمجھ اپنے آپ کو سمجھ جاؤ. تو ہوا کیا, آدھی رات پہ رکھے کفن لے گیا اس کا بھی چھوڑا گیا. اب اس کا آخری وقت آیا, یہ کفن جو منے گا بالکل لاش لے جا گیا. اب اس کو پورا اپنا بیک یاد آیا کہ میں نے اس کا چورا اس کا چورا اس کا چورا اس کا چورا, میرا کیا ہوگا. اب یہ کامنے لگا, کامنے لگا. لٹرل دیکھو اللہ کتنا کریم ہے, بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا مرسیفل ہے. میں وہ جو بولا ہفتے میں مہینے میں ایک چیز کو چھوڑ, 24 گھنٹے میں ایک چیز یاد رکھو کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے, علی ابن یتیم کو یاد رکھو اور خود اپنے آپ کو نہیں. کچھ مت کرو, خالی رات میں بولا اللہ تو مولا آپ مجھ سے راضی ہو جائے, ایک جملہ تو بولو بولا پلیز آپ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اب اس کا آخری وقت ہے, لاسٹ ڈیز آ گیا, بالکل بستر مرگ پہ آ گیا, کبھی بھی مر جائے گا. اب اتنا رونے لگا, اتنا رونے لگا, جاہل تھا ظالم تھا کہ میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. اس نے کہا, شیطان نے اس کو دادا فرمایا, ایسا کر تو یہ وصیت کر دے کہ تیرے بچے تیری باڈی کو جلا دے, راگ ہوا میں منتشر کر دے, تو تیرا کفن کوئی نہیں چرائے گا. ڈر اچھی یہ کر رہا ہے, ڈر کیا کر رہا کہ اگر میں نیچے جاؤں گا تو میرا کیا حشر کرے گا. بس وہی کیا, باڈی ایشز ہوا میں پھینک دی. اللہ خاطر مطلق ہے, جب کچھ نہیں تھا تو پیدا کیا ہم کو, اس نے مریضوں کو حکم دیا اس کی پوری باڈی اس کی راک کو جمع کرو, ایک سیکنڈ میں جمع ہو کے سامنے آتا. فرشتوں نے کہا پروردگار حکم کر, اب اس کے ساتھ کیا سزا کرنا چاہیے, اس نے اتنے رواں کیا. آواز آئی, آلریڈی اتنا ڈر گیا مجھ سے, اب میں کیا اس کو اور سزا دوں, چلو میں نے اس کو معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ اسی لیے معاف کیا کہ وہ ڈرنے لگا تھا اللہ سے, ڈرا تھا اللہ سے کہ میرا کیا ہو, یہ ڈر ہمارے پاس پیدا ہو. اسی لیے کیا کہا گیا کہ اپنے گناہ کو یاد کرو, دوسروں کی نیکیوں کو یاد کرو, اپنی نیکی کو یاد مت کرو. کیوں نہیں یاد کرو؟ اگر تم اپنی نیکی کو یاد کرو گے تو تم استغفار نہیں کرو گے. اور کثرت سے بہترین عبادت, ساری عبادتوں کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ استغفار ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو اگر آپ جا کے ہمارے معصومین کی ساری دعاؤں کو دیکھو, کسی دعا میں بغیر استغفار کے معصوم نے دعائی نہیں کی, پورے دعا اٹھا کے دیکھ لو, معصومین معافی مانگی جب تو ان کو حق نہیں معافی مانگی. یہ ہے ایمان کی زندگی. اس کے بعد اس ایمان کو بس میں چاہ رہا تھا جا کے ہم شروع کر, میں شروع کر کے ختم کر دوں گا, ڈونٹ وری. آج با ایک سروا پڑھے محمد والے آپ میرے طرح متوجہ ہیں. اس کے بعد ساتویں امام کا زمانہ جب بالکل لاسٹ, جیسا ہارون رشید ظالم ظلم کر رہا تھا, ایک چاہنے والا, دیکھیے یہاں پہ بہت میسیجز ہیں, ایک چاہنے والا مدینے میں رہتا تھا امام بغداد میں, وہ بڑا تڑپ رہا تھا کہ میں امام سے کیسے ملوں, اتنا زمانہ ہو گیا میں نے امام کی زیارت نہیں. وہ تڑپ میں وہ آیا بغداد, آ کر اس نے ہر طرف معلوم کیا, پھر اس کو دوست ملا, اسے کہا فلاں آدمی سے میری دوستی ہے جو کیئر ٹیکر ہے اس زندان کا, اور میں تم کو زیارت کراتا ہوں. 14 سال ہو گئے اس کی امام سے ملاقات نہیں. وہ فکر وہ شوق ہے زیارت امام میں, یہ آل دا وے ٹریول کر کے آپ یہ بولیے آج ہم کو کوئی فکر ہے کہ میں امام سے ملوں؟ کبھی میں دعا کرتا, آپ انصاف سے بول دو میری 1000 دعائیں, ان دعاؤں میں کیا میری یہ دعا ہے کہ مولا پلیز مولا آئی وانٹ ٹو سی یو؟ شیعہ بولتا کہ زمانے کے امام کو بولتا ہے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا, یہ دعا ہی نہیں کرتے ہم. اس زمانے کے شیعہ کا کیا تھا اور آج کے شیعہ کی شیعہ دیکھو. آج ہم کبھی یہ بولے کوئی بھائی ہوگا, لوگ بولنے والے ہوں گے, لیکن جنت بات کر رہا. عزیزہ لکھتے ہیں امام کو, عزیزے میں اپنی حالات لکھتے, لیکن مجھے آج تک عزیزے میں کوئی ایسا بھی نہیں ملا. 14 شعبان جب بھی میں جہاں بھی کرتا ہوں میں تو بولتا ہوں کہ بابا یہ لکھو, یہ لائن لکھو کہ مولا 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 پلیز ایک دفعہ اپنی زیارت کرو, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ہم کبھی نہیں بولتے یہ بات. عمر زمانے کے شیخ کو دیکھو, ساتویں امام کے زمانے میں بلا رہے امام کے لیے بھی کر رہے اور میں یہ سمجھ رہا کہ میں سب سے بڑا امام کا فالوور ہوں. کہاں کے فالوور ہے بھائی؟ ایک دفعہ میں امام سے ملنے کی دعا نہیں کر دے پھر میں فالوور آف امام. امام یہی بول کے طرف تھا کہ کاش 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 میرے شیعہ ویسے ہو جائے جیسا ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے. امام بول رہا میں نہیں بول رہا. ہوا کیا اس کے بعد؟ وہ آیا جو امام کی سالت میں تھا. وہ آیا کہاں آیا؟ بغداد آیا. جو فرینڈ سرکل تھا اس سے ملاقات کر کر کے وہ واسطہ نکال کے زندان مان کے اس نے کہا ٹھیک ہے کل رات میں آنا مڈ نائٹ کے وقت آنا میں دروازہ اوپر سے کھولوں گا امام جیل کے اندر ہے تم آنا میں تم کو امام کی زیارت کرا دوں. یہ پوری تکلیفوں کو برداشت کر کے پہنچ گیا. پہنچا وہاں پہ دوستو کس حالت میں امام تھا یہ دیکھو. اس نے زندان کھولا انڈر گراؤنڈ تھے مولا اوپر ایک وینٹیلیٹر تھا اس نے وینٹیلیٹر کو کھولا کھول کے کہا اوپر سے نیچے دیکھ لیتے رہا امام نیچے یہ اوپر سے ایسا دیکھتا ہے پلٹ کے کہتا ہے میرا امام کہاں وہاں پہ کپڑا پڑا ہوا امام کہاں ہے کہ وہی تیرا امام یہ حالت ہو گئی امام. اس طرح سے امام نے زندگی گزاری اتنے کمزور ہو گئے تھے. آپ کو معلوم ہے اس جیل کے اندر مولا کو زنجیروں میں ہتھکڑیوں میں رکھا تھا ہارون نے. ہارون روز امام کے اس خاتل پہ لعنت پڑھو نماز کے بعد. ہارون رشید وہ ظالم ترین اللہ پہ عذاب نازل کرے کہ جس نے صاحب امام کو شہید کیا. شاہ یہ ایک امام ایسا ہے کہ شہادت کے بعد تین دن تک آپ کا تابوت بغداد کے پل پہ رکھا ہوا تھا. آج بھی کاظمین کا سب سے بڑا جو جلوس ہوتا وہ 25 رجب کا. میں ابھی رجب میں وہیں تھا جب 13 رجب کی زیارت کو ہم لوگ گئے تھے. وہاں سے جب میں کاظمین کی زیارت کو گیا تو وہ تیاری ہو رہی تھی. 25 رجب کو آلموسٹ 3 ملین لوگ رہتے ہیں کاظمین آتے ہیں. اب مولا کا تابوت لے کے بغداد کے پل. اور یہ ایسی دعاؤں کی قبولیت کمر کے درد کے لیے اگر کسی کو بیک پین اسپائن کی تکلیف ہے یا آنگ کی تکلیف ہے مصحف جعفر کا واسطہ لے کر دعا کرو دیکھو تمہاری دعا کیسے قبول ہوتی. یہ باب الحوائج عجیب. بس امام کی شہادت 25 رجب کو ہوتی ہے. امام کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا غریب الغرباء. آج میں چاہتا کہ غریب امام کے بھی 2-3 واقعات پڑھ کے اس لیے کہ کافی آپ کو پتا ہے. اللہ سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ ہم کو ہر امام کی زیارت نصیب کرے لیکن اس امام کی زیارت بار بار کرو. غریب امام کی زیارت جب موقع ملے گا اس لیے جتنی دفعہ تم جاؤ گے اتنا تمہارے لیے فائدہ ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہماری مصیبتوں میں اور وہ مصیبت کہ جس مصیبت میں کوئی ساتھ دے دیتا نہ بیٹا دیتا نہ پیسہ دیتا نہ کوئی گھر دیتا کوئی چیز. بڑے بڑے ملینئرز کی جب میں باڈیز کو دیکھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں یار آج ان کا پیسہ کام نہیں آیا ان کا بڑا پیلس کام نہیں آیا موت آ گئی کوئی نہیں روک سکتا بہت بڑی بڑی ہستی آپ کے سامنے. تو موت کے وقت 3 جگہ اور امام نے 3 وعدے وہ کیے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی پہلی رات جب ملک الموت آئے گا تو اس وقت آؤں گا. جب پہلی رات کو اس کا بیٹا لیٹا کے اکیلا چھوڑ کے جائے گا تو میں آ کے مدد کروں گا. اور ڈے آف ججمنٹ میں جب وہ اپنے اعمال کو لے کے اللہ کے سامنے جائے گا اس وقت میں مدد کروں گا. آپ کو ایک اور بات پتا نہیں آپ لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا یا نہیں کیا. ایران ماشاءاللہ ہر آدمی جاتا ہے اللہ بار بار ہم کو نصیب کرے. غریب امام کے روزے میں دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا یہ بات. مسجد مقدس میں دیکھا نہ جو ویشم میں نے دیکھا نہ کربلا مولا میں نے کہیں نہیں دیکھا صرف مسجد مقدس. آپ اب کی جانا تو غور کرنا جب لوگوں کے جنازے آتے ہو حرم میں تو جنازہ اندر آتا اسے کہ تواب تو نہیں کر سکتے پارٹیشن مولا کے ذریعے کے اندر سے باہر نکل کے چلا. جب باہر گیٹ پہ آتا مطلب فرسٹ گیٹ پہ اندر شہر میں آتا وہاں پہ سب کارپیٹس بچھی ہوئی ہے چاروں اور ان کارپیٹس پہ سے پورے زائرین جو ہے اندر حرم کے اندر جانے جو اینڈ ہے جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا حرم کا انٹرنس وہاں پہ بالکل رائٹ ان سائڈ دا حرم پورے زائرین ہزاروں زائرین اس کارپیٹ پہ سے جاتے اور اس کے بعد اندر سیدھا زریق پر جاتے. تو یہ خدام کیا کرتے معلوم باڈی کو رکھتے اور وہاں کے تو عرب کے باڈیز آپ جانتے ایک اسٹریچر پہ ہوتے رکھتے اوپر سے کپڑے کو ہٹاتے یہ بندے کفن کھولتے ہیں چہرہ سامنے جو کارپیٹ سے لوگ جا رہے نا اس کارپیٹ کو اٹھاتے उठा के उसकी गर्द जो है इसके बॉडी पे डाल दी। आप समझे? हमें ये नहीं समझे क्यों करते। ज़ायरीन के पैरों की खाक वसीला बन रही इस मरहूम के लिए। क्या सुन रहे यार, कितनी बड़ी बात है। आप रहमान का है नजफ फैशन में आप देखते नहीं होता। मैं तो नजफ फैशन तो माशाल्लाह साल में दो दफा जाता हूं। अल्लाह बार बार जाना नसीब करे। सौ से मैयत यहां लेकिन ये ना नजफ फैशन में ना कबल मौला में सिवा रहमान का कि खुदा मानते पूरी कारपेट को उठाते उसकी बॉडी पे सद छटकते फिर बंदे दफन रखते कपड़ा लाते ले जाके अंदर दफन कर देते। ये गरीब इमाम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़ियारत, इमाम की ज़ियारत। और इस इमाम के बारे में और बताओ, आपकी विलादत होती है 154 हिजरी में, 148 हिजरा मदीना मुनव्वरा। आपके वालिद सातवें इमाम, आपकी वालिदा उम्मुल बनीन, बीबी उम्मुल बनीन बड़ी पाक और पाकीज़ा बीबी थी। बीबी उम्मुल बनीन आपकी माँ का नाम है। और आपकी शहादत होती 203 हिजरी, लगभग 48 ईयर्स का आपका सिन था मौला का। आपका नाम अली रखा गया। ये सिलसिले इमामत का तीसरा अली, पहला मेरा मौला, सेकंड चौथा इमाम, थर्ड इमाम रजा और फोर्थ जो है दसवें इमाम। सिलसिले इमामत का अली नाम रखा। आपकी कुनियत जो है अबुल हसन है, अबुल हसन, अबुल हसन। तीन या चार इमामों की कुनियत, पहले इमाम की कुनियत अबुल हसन है मौला की, लेकिन मौला अबुल हसन की कुनियत से मशहूर नहीं है। ज्यादा मशहूर अब जब तारीख में हिस्ट्री में अबुल हसन से कोई रिवायत आई तो वो आठवें इमाम कहलाए। अबुल हसन ने अव्वल, नवे इमाम भी अबुल हसन कहलाए, अबुल हसन ने दानी और अबुल हसन ने सालिस। ये तीनों इमाम को अबुल हसन कहा। आठवें इमाम का दौर का ऐसा इमाम का पीरियड है और इमाम ने ऐसे कहा। देखिए मैं जो मशहूर वाक़ियात है वो वाक़ियात नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा। जैसे नैशापुर का वाक़िया, खदमगाह का वाक़िया मैं नहीं पढ़ा। आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, इसलिए कि आठवें इमाम के बारे में तो थोड़ा फिर भी हमारे पास इल्म है। अब कल से नवे दसवें और ग्यारहवें, दो दिन में तीन इमामों को कवर करना है। वो भी मैं बार बार बोल रहा कि मैं इनकम्प्लीट मदी से पढ़ा। मैं आपको वेलेट भी क्लियर, मैं कोई ये नहीं पढ़ा कि मैंने पूरी कंप्लीट कर दी, नो, इनकम्प्लीट पढ़ा। इसलिए इनकम्प्लीट पढ़ा कि वक्त की कमी है, इमाम के हालात ज्यादा है, आपको कुछ भी नहीं, खाली एक स्केच मिला होगा और उससे ज्यादा डिटेल में नहीं मिले। लेकिन जो भी मिला कम अज कम कोशिश करो कि एक एक इमाम को राजी करो। अगर कुछ ही नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अगर मैं इमाम को हैप्पी कर लिया, अपने अमल से राजी कर लिया, तो वो मेरा पूरा अशर कामयाब हो, हमारी जिंदगी कामयाब हो। राजी करना, ये फिक्र करना। तो आठवें इमाम के विलादत मदीने मुनव्वरा, शहादत मशहद मुकद्दस, और आपके जमाने के जो हाकिम थे, बादशाह थे, जब आपकी विलादत हुई तो मंसूर दुआनखी बनी अब्बास का वो जालिम हाकिम था। उसके बाद वो चारों गुजरे हारून रशीद तक, और आपका जो खातिल है वो मामून रशीद है। और ये वो जालिम है कि जिसने इमाम को, जिसने अपने सगे भाई महदी को पहले कत्ल किया, कत्ल करके। अच्छा, ये जो था मामून रशीद, ये अरब की, अरब से ईरान की औरत से पैदा हुआ था, इसकी माँ ईरानी थी, और महदी जो था इसका बड़ा भाई वो अरबी माँ का था, तो अरब पूरा जो है महदी को सपोर्ट कर रहा था, अजम वाले मामून रशीद को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इसने अपनी फौज को जमा करके, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, फौज को जमा करके खुद हाकिम बना, रूलर बना, किंग बना, अब बनकर उसने अपने सगे भाई को मारा। अब इमेजिन करो कि जो अपने सगे भाई को मार सकता, क्या वो इमाम रजा से मोहब्बत करता था? नहीं, मोहब्बत उसने जो इमाम को क्राउन प्रिंस बनाया था वो उसकी मजबूरी थी, उसकी मजबूरी थी। इसलिए मजबूरी थी कि अरब पूरा नाराज हो गया था, अब और झगड़ा नहीं चाहता था। उसने कहा कि खानदान अहले बैत से किसी को लो जो अरब है, लो लेके अरब को अपनी तरफ कर, पूरा अरब। और इमाम को जब इसने ऑफर किया, क्राउन प्रिंस ऑफर किया कि आप मेरे वलियत बने, इमाम ने कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी हुकूमत, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे चाहिए नहीं। उसने फोर्स किया, बेइंतहा फोर्स किया, फोर्स करके इमाम को ये जॉब ऑफर की। इमाम ने एक कंडीशन भी ली थी, ये वलियत दी कि हुकूमत के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, शरीयत के मामले में बोलूंगा, जो इमाम की मीरास है, शरीयत इमाम की, किसी और की नहीं है। इमाम पूरे शरीयत, اب امام آئے واپس کیسا ہے وہ پورے واقعات آپ کے سامنے میں چھوڑ دے رہا. آج کی مجلس سے کمپلیٹ کرنا ہے وقت پہ کمپلیٹ کر دوں گا. کل سیٹرڈے ہے, کل نویں امام اور دسویں امام, اور لاسٹ ڈے جو منڈے کی تقریر ہوگی وہ ہو سکتا ہے گیارہویں امام ہو جائے کمپلیٹ. اس لیے کہ گیارہویں امام کے زمانے کی بہت نویں امام سے کل سے آپ دیکھنا نائنتھ اینڈ ٹینتھ اینڈ الیونتھ امام کا ایک پریپریشن ہے زمانے کے امام کے غیبت کے لیے. غیبت شروع ہونے والی ہے تو اماموں نے پریپیئر کیا شیعوں کو کہ غیبت میں یہ اوکلٹیشن میں کیسے رہنا. اس لیے کہ اگر وہاں امام پریپیئر نہیں کرتا تو غیبت میں شیعہ بکھر جاتے. جو اتنی محنت کر کر لے کر آئے تھے نا, اس محنت کو بچانے کے لیے نویں دسویں اور گیارہویں یہ زمانے کے امام کی غیبت کا پریپریشن ہے پورا. اور کل سے سننا آپ انشاءاللہ. تو جب امام آئے مسجد مقدس آئے طوس آئے تو اس میں مسجد مقدس ہے نا طوس تھا. آئے آنے کے بعد اب آپ جب زندگی وہاں پہ گزار رہے تھے حکومت کے معاملے میں کبھی دخل نہیں دیتے. اچھا اس امام کا ایک لقب ہے امام زامن. زامن کا مطلب کیا ہے؟ ضمانت لینے والا. اس امام کی اس امام کے بارے میں زامن اس لیے اس امام کو کہتے کہ انہوں نے اس زمانے میں ہارون کے زمانے میں بڑا مشکل تھا کربلا کی زیارت کا. تو امام کے اچھا سکوں کے جو کوائنس تھے مامون کے پاس اس کوائنس پر اوپر ایک طرف امام کا بھی نام آتا. تو اس امام نے یہ کہا کہ تم اپنے ساتھ ہمیشہ ہمارے ناموں کو لے کر چلو. ایک دفعہ مامون دربار میں بڑے غصے میں بیٹھا ہوا تھا, امام کے اوپر ناراض ہوئے کہ ہر آدمی امام کی طرف جا رہا, مجھے آگے کوئی نہیں پوچھ رہا, میں کنگ ہوں, میں رولر ہوں, وہ تو کراؤن پرنس ہے. اور وہ امام کا کردار تھا کہ ہر آدمی آ رہا تھا امام کے پیچھے. اس نے کہا میں آج امام کو قتل ہی کر دوں گا, دربار میں اعلان کیا. غلام سے کہا کہ جا کے علی رضا کو بلا کر لاؤ. غور سے سنو زامین کیوں ہوئے. علی امام علی رضا کو بلانے کے لیے وہ گیا. غلام چلا, امام گھر سے چلے. مامون نے مامون کا جو دربار تھا, دربار کا جو انٹرنس تھا مین انٹرنس, اس کے اوپر پردے کرٹنز پڑے گئے. اب وہاں پہ غلام کھڑے رہتے, جب بھی امام آتے تو وہ کرٹن کا سا ہٹاتے اور امام انٹر ہوتے. تو آج اس نے حکم دیا کہ جو پردے ہٹانے والے ہیں ان کو حکم دیا کہ پردے نہیں ہٹانا. ایک معذلہ امام کے انسرٹ کرنے کے لیے کہ خود امام پردہ ہٹایا ہوا ہے اور تلوار کو نیام میں سے نکال دیا. ظالم بیٹھا ہوا کئی ہزار لوگ دربار میں بیٹھے, کہا اب امام علی رضا آئیں گے میں ان کو قتل کر دوں. امام انٹر ہوئے, جیسی اس دروازے کے پاس پہنچے وہ اللہ کی شان, خدا کی حکومت, امام کی حکومت, تیز ہوا چلی, خود بخود پردے ہٹ گئے, امام اندر چلے گئے. اندر جانے کے بعد مامون اٹھ کے بیٹھا, کھڑا ہو گیا, لٹرلی کھڑا, بازو بٹھایا امام, بہت سافٹلی بات کرا, بہت اچھی بات کرا. بات کرنے کے بعد 50,000 دینار کیا بیگ امام کے حوالے کیا, کہا فرزند رسول یہ رکھیے, یہ تحفہ ہے میری طرف سے. امام واپس آ گیا. واپس آئے تو لوگوں نے کہا تو بڑا بتا رہا تھا کہ میں مار دوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, کیا ہوا تیرا؟ کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا امام آئے, امام علی رضا ہے, میرا دماغ بالکل معروف ہو گیا, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا, کیا کروں میں. وہاں پہ دربار میں ایک امام کا چاہنے والا تھا, وہ آیا امام کے گھر پہ, آٹھویں امام پہ آگے کہنے لگا مولا کیا بات ہے, آنے سے پہلے تو اتنے غصے میں تھا اور جانے آپ آئے تو بالکل ٹھنڈا ہو گیا. امام نے بازو سے ایک تعویذ نکالی, ایک کپڑے کا اندر ایک تعویذ تھی جو امام کے پہلو میں تھا. امام نے کہا یہ میری دادی فاطمہ کی تعویذ ہے. تم سوائے موت کے, امام کا جملہ ہے, سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا موت کے علاوہ. تو یہ اس کے بعد کہا گیا کہ تم جبھی بھی, آپ جبھی بھی آفس جا رہے, کوئی کام کے لیے جا رہے, ہمیشہ تعویذ امام کے ہاتھ کی تعویذ اپنے پاس رکھو. آج کے دور میں کیا کر سکتے, نام فاطمہ, نام علی, نام حسن حسین, کوئی بھی ہر وقت تمہارے پاس میں رہے, جیب میں رہے, بازو بندہ ہوا رہا ہے امام کے نام, کوئی بھی امام سے تو ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی. اور انسان کو تکلیف نہیں ہوتی جس مقصد کے لیے جا رہا اس مقصد میں کامیاب ہو. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے آپ اتنا ٹریول کرتے فورن میں, اتنے امیگریشن کو آپ کو سامنا کرنا پڑتا, کیا کرتے؟ میں بولتا نہیں ابھی, ہم ممبر سے تھوڑی بولوں گا کہ سب سن لیں. ہمارے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے, امام کی چیز ہے, میرے پاس کیا امام کی چیز. وہ اگر آپ کیری کریں گے تو امیگریشن آفیسر ہو کوئی ہو, हाकिम है वक्त हो तो उसकी आंखों के सामने पर्दा जाओ। तो ऑलवेज ये उनके लिए एडवाइस की गई, आइए इसलिए इस इमाम को इमाम जामिन बोलते, तुम्हारी जमानत लेने वाला, तुमको प्रोटेक्ट करने वाला, तुम्हारी हिफाजत करने वाला जामिन इमाम। तो इस इमाम का इरशाद है कि हमेशा अपने साथ कोई ना कोई चीज को रखो, इंशाल्लाह तुमको उस मकसद में कामयाबी होगी। और एक एक बात बोलूं, अगर शादी के वक्त, मैं बहुत एहतियात से बोल रहा, शादी के वक्त हमेशा इमाम जामिन बांधते बांधते या मैं खोजों में बांधते भाई मानते ना, हमारे पास जो इमाम जामिन मानते हो खाली इमाम जामिन वैसा मानते। अगर ये चाहती लड़की के उसका शौहर कभी उस पर गुस्सा ना करे, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, मैरिड लाइफ में कोई हैप्पीनेस रहे हमेशा, कोई प्रॉब्लम ना रहे, मैं ऐसा हाथ रख के बोलू, तो वो क्या है, जामिन खाली मत मानो, जामिन के अंदर इमाम का नाम रखो। वो खाली जो बेहतरीन मार्केट में मिलता खूबसूरत और जैसा स्टेटस वैसा खूबसूरत इमाम जामिन खा के बाहर, वो स्टाइल के लिए नहीं है, वो क्या इमाम जामिन बाहर बड़ा कीमती 10,000 रुपए का एक इमाम जामिन है, वो 10,000 की वैल्यू नहीं है, इमाम के नाम की वैल्यू होना चाहिए। जामिन इमाम का अंदर औरतों को चाहिए कि वो खोल के या अपने घर में इमाम जामिन बनाए तो अंदर मासूम का नाम रखो। अब इतना बड़ा मत रखो, दुल्हन को बिना दो उस वक्त कि वो प्रोटेक्टेड रहे, अपने शौहर के जुल्म से बची रहे। समझ भाई बात, खुश हो गए। तो और एक दूसरी चीज क्या है, हमेशा औरत अपने साथ रखना चाहिए, इमाम का नाम रखेगी तो कभी उसके लाइफ में कभी तकलीफ नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इमाम जामिन इतनी अच्छी चीज है, और ये जामिन इमाम के बता हुआ, ये इमाम जामिन हो गया। और एक बात बोलो, इमाम जा रहा था, बस आखिरी बात है, इमाम जा रहा था, अच्छा इस इमाम की ज्यारत रोज पढ़ना, पूरी ज्यारत नहीं पढ़ सकते, अस्सलाम अलैका या अली इब्ने मूसी रज़ा, गरीब और गुरबा जरूर बोलो, दो जुमले सबको याद है ना, घर से निकलते वक्त अगर तुम अस्सलाम अलैका या अली इब्ने मूसी रज़ा गरीब और गुरबा बोल के बाहर जाओगे ना, तुम आज तक तुम्हारे जिंदगी का जामिन मेरा इमाम होता, ये जामिन इमाम है। अब बस आखिरी जामिन इमाम के बाद में बोलूं, इमाम जा रहे थे, इमाम ने देखा कि एक शख्स हिरन को, हिरन समझते हो, डीर, वो पकड़ के लेके जा रहा था और खींच के लेके जा रहा था। जैसे हिरन ने इमाम को देखा, आठवें इमाम को, अपनी जबान में रोने लगी, तड़पने लगी, पुकारने लगी। देखो इमाम किस किस के जामिन है। तो इमाम ने इस शख्स से कहा जो पकड़ा हुआ था, तू इसको छोड़ ले। वो इमाम को नहीं जानता, उसने कहा क्यों छोड़ो, तो कहा इस ये तड़प रही है, तो क्या आप इसकी जबान जानते हैं, हमने कहा हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा तुम जबान जानते हो, क्या कह रही है, ये कह रही है कि इसके बच्चे भी भूखे हैं, ये कह रही है कि मैं जाके दूध पिला के वापस आ जाती, तो इमाम ने कहा इसको छोड़ दो, ये जाके दूध पिला के वापस आएगी, अय्याम ऐसा का जमाना था। तो उसने वो हंसने लगा, हंस करके कहने लगा ये शख्स तुम क्या बात कर रहे हो, अगर मैं छोड़ दूँ तो ये आएगी वापस, ये कभी भी नहीं आएगी। इमाम ने कहा मैं जामिन होता, मैं बैठ जाता हूँ तेरे पास, मैं तुझसे वादा कर रहा कि ये वापस आएगी। उसने कहा क्या बातें कर रहे हैं, इमाम ने कहा मैं जामिन हो गया, मैं तुझसे कह रहा कि मैं बैठता हूँ जब तक वो नहीं आएगी, वो आएगी, उसके बच्चे भूखे, देखो कितना ख्याल है यार, कब बच्चे भूखे वो दूध पिला के वापस आएंगे। उसने कहा मैं तुमको पकड़ लूंगा अगर वो नहीं आएंगे। इमाम ने कहा ठीक है, हिरन को छोड़ दो, हिरन उस जमाने में, आज के जमाने में इतना जबरदस्त जानवर है वो, तो चले गए। आने में उसको देर, अभी चीखने लगा, इसने कहा मैंने कहा था तुमसे, ये दौरे अरवईन का जमाना था एक्चुअली, इसने कहा कि मैं तुमसे कह रहा था कि वो वापस नहीं आएगी। इमाम ने कहा नहीं आ जाएगी, तो कहा जो वक्त बोला था आई नहीं। थोड़ी देर के बाद दूर से भागते हुए वो हिरन आ गई। इमाम ने उससे पूछा ये तुझे देर क्यों हुई, उसने कहा मौला मैं आ रही थी दूध पिला के, वहां पे एक जगह मजलिस हो रही थी हुसैन के चेहरों की, हमारी बरादरी में था, तो मैं ठहर गई पुरसे के लिए। इमाम रोने लगा, रो के उसने अब पूछा कि शख्स तुम हो कौन। इमाम ने कहा मैं इमाम अली रजा हूं। कहा आप हैं ये रजा, फौरन इमाम के खदमों पे गिरा, हिरन को भी छोड़ दिया, कहा अब मैं इसको जुबानी कर सकता, मैं इसका शिकार नहीं कर सकता। और इसको भी छोड़ दिया और फिर वो इमाम का मोहब्बी बन गया। तो आपने देखा कि हर तरफ इमाम का मजलिसों की ये इमाम का बड़ा खास जुमला है, कसरत से गरीब इमाम मजलिस करते थे, कसरत से। जब कोई शायर आता पूछते कि तुमने कुछ लिखा है मेरे जद के लिए, वो ये कहते कि मौला आपके पास आए और लेके ना आए, तो इमाम एक मजलिस का एहतमाम करते। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता कि मजलिस का एहतमाम करना, एक प्रिपरेशन करना मजलिस का, ऐसा नहीं कि एड ऑफ इस पर कर रहे, फोन पे भी बात कर रहे, मजलिस में बैठे हुए अपने फोन को भी चेक कर रहे और औरत खाना भी बना रही और मजलिस नौ चल रहा। वैसे कभी मजलिस 5 मिनट की मजलिस करो लेकिन प्रॉपर तरीके से मजलिस करो। तो उसने इमाम हमेशा एहतमाम करते, पर्दा डलवाते और खवातीन को सैलानिया बोलते पर्दे के पीछे आओ, मर्द के और नीचे खुद बैठ जाते। इन्हीं का तो वाक्य हमारा था कि जाकिर पहली कुर्सी पर बैठा था सब पे, इमाम ने कहा और ऊपर जाओ, शेखा मौला आप नीचे बैठे हुए तो कह नहीं और ऊपर जा, पलंगी पे लेके जाकर बिठाया था और खुद नीचे बैठे। उसके बाद इमाम का जुमला के मेरे जद का जिक्र ऊपर बैठ के कर, ये सब बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ मजलिस क्या है। तो लोगों ने कहा कि मौला आप इतने मजलिसें करते हैं अय्याम ऐसा भी नहीं है जब मौका मिला मजलिस करते। तो उस पर इमाम ने कहा था कि तुमने गदीर को भुला दिया, गदीर को भुला दिया, हम करबला को भुलाने नहीं देंगे। ये इमाम का जुमला है। तो मेरा दोस्तों मौला हम सबको सारे मासूमीन की तेरा मासूमीन की ज्यारत नसीब हो और मासूमीन हमसे राजी हो जाए। बस मैंने इस इमाम की शहादत के 2-3 तारीखें 3 dates है। बस आखिरी बात ये इमाम की एक डेट ये है जो सब कॉन्टिनेंट में मानी जाती है, वो 17 सफर है, 17 सफर 17 सफर 40 से 3 दिन पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में 17 सफर मानी जाती है। और इमाम रजा के रोजे में मस्जिद मुकद्दस में अगर आप जाएंगे तो 29 सफर है वहां पे, 29 सफर है वहां पे, कहां पे मस्जिद मुकद्दस में, वहां पे 17 सफर डेट नहीं है। उनकी शहादत इमाम की शहादत के 3 तारीख है, एक 17 सफर है सब कॉन्टिनेंट में, 29 सफर है मस्जिद मुकद्दस में और पूरा अरब 23 ज़िलहिज़ 11th month of lunar calendar का 23 ज़िलहिज़ पूरे अरब में किताबों में भी आपको 23 ज़िलहिज़ की तारीखें ज्यादा मिलेंगी, 17 सफर है और 29 सफर वाला, तीनों तारीखों सफर में तो चलो सब हम गम में रहते लेकिन 23 ज़िलहिज़ मेरे ख्याल से आप लोगों के खोजे भाइयों के कैलेंडर में 23 ज़िलहिज़ नहीं है, चेक कर लो। इसलिए क्या से 4 साल या 5 साल पहले तक तो नहीं थी, अगर आप चेंज हो गई है तो वेरी गुड। तो 23 ज़िलहिज़ याद रखना, ये इमाम की शहादत की तारीख है जो आपको सारी किताबों में मिलेगी और 17 सफर भी किताबों में है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में मानी जाती है। 2 तारीख इमाम की शहादत की है और आपकी शहादत 203 हिजरी में हुई और आपकी शहादत के वक्त नवे इमाम का सिन 6 बरस या 7 बरस का है। कल इंशाल्लाह 9th इमाम का जिक्र होगा और 10th इमाम का थोड़ा होगा, लास्ट मजलिस में 10th इमाम एंड 11th इमाम का जिक्र होगा। तो बारा इमाम की शहादत की तारीख 3 तारीखें हैं और विलादत में कोई इख्तलाफ नहीं है, 11 ज़िलहिज़ आपकी विलादत है। दोस्तों गरीब इमाम ने कसरत के साथ आजादारी की, इसलिए हर इमाम ने आजादारी की लेकिन इस इमाम ने ज्यादा आजादारी की और दुनिया को बताया, चाहने वालों को बताया कि हम आजादारी हमारी रूह है, आजादारी हमारा ब्लड है, आजादारी हमारी हर चीज है। इसलिए कि आज जो इस्लाम बचा हुआ है वो सिर्फ आजादारी हुसैन के, इसलिए हुसैन का जिक्र, हुसैन का गम, हुसैन की मुसीबत, हुसैन की तकलीफ इतनी है कि इतने अरसे के बाद भी आज गम हमारा बिल्कुल ताजा है। आज एक ऐसी तारीख में हम दाखिल हो गए, 7 मुहर्रम सिर्फ 2 दिन रह गए बस, उसके बाद ये घर में अलम, ये आपका रोज का आना, रोज इस घर में कितनी रौनक थी कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सब जमा हो रहे थे, एक बरकत थी कि हुसैन का जिक्र है, हुसैन का जिक्र। दोस्तों 7 मुहर्रम एक चीज से मशहूर है, 2 चीजों से, एक हुसैन की प्यास, एक करबला के दूल्हे का जिक्र, उस कासिम का जिक्र होता है, हसन के यतीम का जिक्र, कल से आप मुसलसल शहजादे का जिक्र सुन रहे और एक प्यास। करबला मोहल्ला में आप गौर से सुनो, तड़प के रहोगे, करबला मोहल्ला में एक जाकिर था सैयदजादा, उसने रोज बैठ के हरम में मसायब पढ़ता था, इन लोगों को रोजा खां बोलते हैं कि मसायब पढ़ते घर मासूमीन के रोजे, वो बैठ के मसायब पढ़ रहा था। एक दिन उसने ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा, कितनी बड़ी बात है, मौला हुसैन सबके ख्वाबों में नहीं आते, मौला हुसैन को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन आए हैं और आके उस जाकिर से कह रहे कि जाकिर जो आशूरे की मेरी सबसे बड़ी मुसीबत थी ना, तू वो बयान नहीं करता। उसने कहा मौला ये बयान करता हूँ कि आपने अली अकबर के लाशें को उठाया, बयान करता आपने खासिम के फामान लाशें को उठाया, और हर मैं आपकी मुसीबत को कोशिश करता हूँ बयान करने की, लेकिन इमाम एक ही जुमला कि आशूरे में तूने सोचा कि मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है। इमाम कहता है कि जब मैं खैमे में दाखिल होता, छोटे छोटे बच्चे हाथ में खाली कूजा लेकर मेरे सामने आके कहते हैं कि बाबा प्यास मारे डालती है। दोस्तों इमाम सखी कौसर का लाल है, इमाम तरफ जाता कि हाय मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज वही डेट वही तारीख कि पता नहीं सुबह से आपने कितनी दफा याद किया कि आज की तारीख से मौला हुसैन के बच्चे एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रहे थे, और आज उस शहीद का जिक्र है कि जो हसन का यतीम है। ये ऐसा हसन का यतीम है दोस्तों, सबसे शबशोदा में सबसे ज्यादा जो तड़प थी ना, चंगी ख्वाहिश थी, वो शहजादे कासिम की थी। इन्हें पहले से तैयारी कर रहे थे। शब आशूर क्या पूछा था कि बाबा चचा क्या मेरा नाम लिस्ट में नहीं है? तो इमाम ने क्या कहा था कि बेटा तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो कहा कि चचा मौत शहद से ज्यादा मीठी है। बस ये कहना था। हुसैन ने कहा कासिम तुम्हारा नाम भी है, तुम्हारे छोटे भाई अली अजहर का नाम भी। बस अली अजहर का नाम सुना, हसन का लाल है, रगों में खून दौड़ने लगा, कहने लगे कि चचा क्या अशकिया खेमे पर आ जाएंगे? आप सोचो कि कितनी तरफ थी, कितना वो था कि अशकिया खेमे में नहाए। लेकिन शाम गरीबा जैनब ने जरूर याद किया होगा कि बेटा तुमको ये गवारा नहीं था कि अशकिया खेमे में आए और आके देखो कि खेमे कैसे जल रहे। सुबह से शहजादा बार बार ये कोशिश कर रहा था, बार बार जाके कहता था कि चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन हमेशा ये कहते कि बेटा तुम मेरे तुम भैया की निशानी हो, तुमको कैसे इजाजत दो। लेकिन वो वक्त आया जब तावीज खोली गई, तो दोस्तों ये तावीज नहीं थी, भाई को भाई का नाम खत था। जब खत लेकर हसन ने लिखा था कि भैया हुसैन रोजे आशूर में नहीं रहूंगा, मेरी तरफ से मेरे बेटे कासिम को इजाजत देना। हुसैन ने खत पढ़ा, रोने लगे, भाई का जमाना याद आया, भाई की मोहब्बतें याद आई। उसके बाद मौला खैमे में आए, और जब कासिम चल रहे थे मैदान की तरफ, तो उस वक्त बीबी उम्मे फरवा ने रोक के जुमला कहा था कि बेटा मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, इसलिए कि रोज़े महशर फातिमा को सूरत बताना है। और जब मैदान में गया तो हसन का लाल ने वो जंग की दोस्तों, अर्जक और उसके साथ बेटों को वासिल जहन्नम किया। जब अर्जक लड़ने के लिए आया तो जनाब कासिम शागिर्द है मौला अब्बास के, अब्बास मैदान में निकल कर आ गए और आगे कहा कि बेटा घबराओ मत, मैं हूं यहां पर। और चंद लम्हों में जब अर्जक को वासिल जहन्नम किया, तो अब्बास दौड़ते हुए मैदान में आए और आके कासिम को सीने से लगाया और एक जुमला कहा कि बेटा खूब जंग की, बाबा की जंग याद आ गई। उसके बाद वो मंजिल आई कि कासिम घोड़े से जब जमीन पर आया, मैंने मजलिस को खत्म कर दिया दोस्तों, जब जमीन पर आया तो ये वाह पहला शहीद है कि जिससे मदद मांगी है। हर शहीद सलाम करता था। कासिम ने कहा चचा मेरी मदद तो है ये, बस ये कहना था। हुसैन तलवार लेकर चले, बीच में फौज आ गई, करबला का दूल्हा हाथों को टेक कर जमीन पे चचा का इंतजार कर रहा था। इधर की फौज उधर होने लगी, इधर के घोड़े उधर होने लगे, कासिम पुकारने लगे कि चचा मेरी मदद को आइए। जब हुसैन पहुंचे तो कासिम के लाश के टुकड़े हो चुके थे। हुसैन ने अबा बिछाई, एक एक टुकड़े को रखा, और जब ये लेकर गठरी को लेकर खैमे में पहुंचे, दरवाजे पे ज़ैनब खड़ी हुई थी, कहा कि भैया कासिम कहाँ है? जब गठरी खोली गई, बीबियों में कोहराम मच गया, कुबरा ने सर से चादर उतारी और कहा शायद तुम भी हमारे हाल परेशान को देख लो।